वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले। कैसे बतलाए वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले।
ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हम सुने सुने। बाबा ने बहुत सारे वरदानों की हम ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर बरसात की। हम सब आत्माएं कितनी पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं जो स्वयं भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि वरदानों की बरसात करके हमें भरपूर करते हैं। कितनी हम सब आत्माओं के अंदर विशेषताएं हैं, बाबा केवल उन्हीं का वर्णन करते, विशेषताओं को ही हमारे सामने रखते हैं और विशेषताओं के आधार पर ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं। एक एक बाबा का बच्चा कितना वैल्यूबल है, उस वैल्यू को भी हम महत्व दे सकते तभी दे सकते हैं, उसको तभी समझ सकते हैं जब हमें बाबा ने जो हमको वरदान दिए हैं वो हमें जरा स्वास्थ्य स्मृति में रहे तो। क्योंकि जब हमको वरदान स्मृति में रहते हैं कि हमें किसने वरदान दिए हैं, कौन देने वाला है, वो ऊंचते ऊंच भगवान जिसे सारा संसार अभी भी ढूंढ रहा है लेकिन हम उसकी नैनों में उसके दिल में बैठकर इस संगम युग के अमूल्य क्षणों का पूरा आनंद ले रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो हम सबका कितना परम सौभाग्य है। आज की सारी मूल्य वरदानों से भरी है और बाबा ने वरदानों को कैसे हम अपने जीवन में लाएं, कार्य में लगाएं, हम सबको वो विधि बताई। पांडवों की विशेषताओं का बाबा ने जिक्र किया तो एक एक महावाक्य को आत्मसात करने के लिए बहुत तन्मयता से एकाग्रता से उसका अध्ययन करने की जरूरत है ताकि वो हमारे जीवन में समा जाए, हमारे नेचुरल नेचर में वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगे। जैसे हम भोजन करते हैं तो हाथ अपने आप मुख की तरफ जाता है, उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है, उसी तरह बाबा के वरदान भी हमारे जीवन में कार्य करे नेचुरल रूप से। हमें सोचना नहीं पड़े कि इस वरदान को हम कार्य लगाए या कौन सा वरदान कार्य में लगाना है कौन सा नहीं लगाना है, बल्कि समय अनुसार अपने आप ही वो वरदानों की स्मृति आ जाए। उस स्मृति के अनुसार हम अपना समर्थ का भी अनुभव कर सकते हैं। संसार में तो लौकिक गुरुओं के पास भगत आत्मा जाती हैं। बाबा ने जिक्र किया, कोई पुत्रवान भव, कोई धन के लिए अपना आशीर्वाद मांगते हैं, संपत्ति के लिए मांगते हैं, अनेक प्रकार की जो अल्पकाल की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भक्त आत्माएं गुरुओं से मांगती हैं, कृपा आशीर्वाद मांगती हैं। लेकिन यहाँ तो स्वयं भाग्य विधाता बाबा वो ही अपना हो गया हम ब्राह्मण बच्चों का, तो हमारा कितना सौभाग्य है कि निरंतर बाबा के वरदानी हाथ हमारे सिर पर हैं। बाबा ने कहा ना, भक्त आत्माएं भी चाहती हैं कि कोई हमारे सिर पर हाथ रख दे, लेकिन यहाँ तो स्वयं वरदान वरदाता के हमारे ऊपर बरस रहे हैं, स्वयं भाग्य विधाता दाता वरदाता का वरदानी हाथ हमारे मस्तक पर है। अर्थात उसकी जो मत मिली है, इसे मत मिली है, जो पढ़ाई है, उसकी जो शिक्षाएं हैं, सावधानियां हैं, समझानी है, उनको ही जीवन में लाने से वो हर ज्ञान का बिंदु हमारे लिए वरदान का काम करता है। तो आज की मुरली है 1 अगस्त 2021 और इसकी जो रिवाइज डेट 1988 ओम शांति ओम में चली मुरली है 24 फरवरी की। आज से 33 साल पहले तो आज बाबा ने किसको देखा बताओ बताओ बताओ। हाँ, आज बाबा ने अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देखा, बाप दादा ने अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देखा है ना। और चात्रक बच्चों की बाबा से मिलने की इसमें जो स्थिति होती है, बाबा ने उसका वर्णन किया कि बाप बच्चे जब सुनते हैं तो सुनने के साथ मिलन मनाते हुए भी बाप स्वान बनने के चात्रक बन जाते हैं। वैसे भी अगर हम बहुत अच्छा कोई हमारा दोस्त हो जिसमें हमारे से बहुत सारी विशेषताएं हो, गुण हो, बहुत स्वीट बोलता हो, उसका बड़ा मृद स्वभाव हो, कुशल व्यवहार हो, तो हम भी चाहते हैं ना उसके जैसा बन जाएं। इसी तरह से भगवान भी अपना बना है, वो हमें मिला है, तो जब हम बाबा से मिलन मनाते हैं तो बाबा के जो हाव भाव हैं, बाबा की जो मीठी दृष्टि होती है, बाबा के जो इतने शक्तिशाली विश्व कल्याणकारी बोल होते हैं, तो अंदर से ऐसा लगता है ना कि ऐसे हमारे भी हो जाएं। तो ऐसे बाबा चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। ये हर बच्चा चात्रक है, जो मिलते समय बाबा को देखते समय इच्छा होती है कि हम भी बाप स्वान बन जाएं। तो इस ज्ञान से क्या होता है, बाबा कहते जन्म जन्म की प्यास मिट जाती है ना। संसार में आत्माएं इस ज्ञान की प्यासी हैं, भटक रही हैं, तड़फ रही हैं, तो बाबा ऐसी आत्माओं के कंठ तर करने के लिए है ना प्यासी आत्माओं को तृप्त बना देते हैं। ज्ञान एक अमृत है ये, जो हमको बाबा रोज पिलाते हैं। तो हर आत्मा क्या बन जाती है, बाप स्वान ज्ञान का स्वरूप बन जाती है, मुरलीधर बन जाती है। क्या बाबा कहते ना, अगर भगवान से प्यार, मुरली से प्यार, माना मुरलीधर से प्यार। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ज्ञान सुनते सुनते मस्त मुरलीधर बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर क्या अनुभव करते हैं, लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, जैसे बाबा के स्नेह में समा गए है। मिलन मनाते क्या अनुभव होता है कि एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी अनुभूति का वो समय रहता है जब हम बाबा से मिलन मनाते हैं। बहुत भाई बहनों ने लंबे समय तक बाबा से साकार रूप में मिलन मनाया होगा। अभी तो अव्यक्त रूप से ही मिलन मनाने का समय चल रहा है, लेकिन वो अव्यक्त स्थिति का भी हम अनुभव तभी कर सकते हैं जब हम इस ज्ञान को पूरी तरह से बहुत गहराई से दिल से बड़े प्यार से पूरी श्रद्धा भाव से पूरी भावना से इस ज्ञान के प्रति हमारा लगाव हो जाए, इस ज्ञान से हमारा पूरा प्रेम हो जाए। हमारी जो सामान्य बातें भी जो होती है उन बातों में भी ज्ञान समाता जाए तो हम ऐसे बाबा के स्नेह में समाये हुए स्थिति का अनुभव कर सकते हैं और ऐसी आत्माएं बाबा के निर्विघ्न रहती हैं, क्योंकि सदा बाप के संग का रंग लग जाता और वो लाल होते अर्थात बाबा के संग का उनको रंग लग जाता है। तो हर बच्चे की बाबा के आश रहती है ना बाप समान बनने की। तो बाबा ने कहा जैसे सदा सर्वशक्तिवान बाप है, बच्चे भी तो सदा मस्त सर्वशक्तिवान है ना, जैसा बाबा वैसे बच्चे हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो जो शक्तियां बाप में हैं वो बच्चों में भी हैं, इसलिए सदा शक्तिशाली सदा लाइट। तो कितनी शक्ति है हमारे में, क्योंकि जब भी हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो हर शक्ति की जरूरत पड़ती है। कोई हमारे सामने आता है किस मेंटेलिटी से आ रहा है, कैसी उसकी इच्छा है, तो उसको परखना बहुत अनिवार्य होता है। जन्मते ही बाबा कहते मैंने हर बच्चे को वरदान दे दिए हैं, कोई भी ऐसा वरदान नहीं रखा जिससे बच्चे वंचित रहे, क्योंकि बच्चा जन्मना माना वर्षे का हकदार बना। तो बाबा ने अपने सारे वरदान जनते हम सब बच्चों को दे दिए। सर्वशक्तिवान वो जो बाबा ने पहले पैरे में जिक्र किया, सर्वशक्तिवान वो अर्थात बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं वो भी हमारी स्मृति में पहले रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी स्मृति में नहीं है तो फिर समय पर काम कैसे करेंगे। कहां हमें सहन करने की शक्ति चाहिए, कहां सामना करने की भी शक्ति चाहिए, कहां समाने की भी शक्ति चाहिए, कहां परखने की भी शक्ति चाहिए, कहीं निर्णय करने की शक्ति चाहिए, कहां स्नेह की शक्ति चाहिए, कहां संपूर्ण पवित्रता की शक्ति चाहिए, कहीं सहयोग की शक्ति चाहिए, कहां समेटने की शक्ति चाहिए, विस्तार करने की शक्ति भी चाहिए, पाने की शक्ति चाहिए, मनसा शक्ति चाहिए। तो ऐसे शक्तियों का अगर हम लिस्ट निकालें तो लिस्ट निकालते निकालते वो चिंतन करते करते बहुत समर्थ स्थिति बन जाती है, और वो शक्तियां स्मृति में रहने से मन भी शक्तिशाली बन जाता है। तो जो भी हमें बाबा से टाइटल मिलता है उस पर हम थोड़ा बारीकी से गौर करें, थोड़ा चिंतन करें, तो वो हमारे में जब समाने लगेगा तो वरदान के रूप में हमें कार्य करने स्वतः लगेगा। क्योंकि जब तक उन महावाक्यों पर हमने विचार नहीं किया, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया तो वरदान के रूप में नहीं बनेंगे, वो केवल हमारे बुद्धि तक सीमित रहेंगे। लेकिन वरदान बाबा कहते जहां मेहनत नहीं है किसी प्रकार की, वरदान माना स्वतः अपने आप सारे काम होने वाले। तो अगर हमको उस स्थिति का अनुभव करना है तो हर शक्ति को उस पर चिंतन करना पड़ेगा, उस पर देखना पड़ेगा, गहराई से उसकी महसूसता करनी पड़ेगी। तो एक एक बाबा का जो टाइटल है हमारे लिए वरदान का कार्य करेगा, क्योंकि बाबा ने कहा ना जैसा बाप का नाम क्या है विश्व कल्याणकारी, तुम बच्चे विश्व कल्याणकारी। अगर हम इस एक ही टाइटल को ले लें विश्व कल्याणकारी, अब इस टाइटल के ऊपर अगर देखा जाए तो विश्व कल्याणकारी आत्मा का मन कैसा होगा, उसके मन में विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति कैसी भावनाएं होंगी, कैसे विचार होंगे, कैसे बोल होंगे, कैसा कर्तव्य होगा, कैसी एक्टिविटी होगी, वो कैसे उनके समन्वय संपर्क में आएगा, कैसी भावनाएं होंगी। तो बाबा का कार्य विश्व कल्याणकारी का है तो नाम भी विश्व कल्याणकारी है, तो हम बच्चों को भी बाबा उसी टाइटल से सुशोभित करते हैं, श्रृंगारित करते हैं। तो बाबा का नाम क्या है? विश्व कल्याणकारी। और रूप बाबा का ज्योति बिंदु, तो बच्चों का रूप भी कौन सा? वही है। तो हम केवल एक ही चिंतन को पकड़ लें कि मेरा बाप कैसा है। अगर हम इसी एक महावाक्य पर ठहर जाएं कि मेरा बाप कैसा है, तो मन में चिंतन अपने आप चलना आरंभ हो जाएगा। मन में आएगा कि वो देखने में कैसा है, सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत सुंदर रूप उसका, चकमक है, जगमगाता हुआ सितारा है, सर्वशक्ति से संपन्न है, निर्वाण धाम में रहने वाला है, उसके अंदर सब बच्चों के प्रति कितना प्यार उमड़ता है, वो प्यार का जैसे सागर है, एक समुद्र है, प्यार के हिलोरे निरंतर उस महाज्योति से चलते ही रहते हैं, उन हिलोरों के अंदर कितनी आत्माएं परमात्म प्यार में खो जाती हैं, समा जाती हैं। तो अगर हम एक ही शब्द ले लेते कि मेरा बाप कैसा है, अगर इस पर हम बैठ जाएं कि अभी हमको जो इवनिंग या मॉर्निंग में हमारा अमृत मिला, या दिन में कभी भी थोड़ा हम टाइम निकाल कर अपने कर्म क्षेत्र पर समय निकाल कर थोड़ा आधा घंटा 10 मिनट भी अगर हम योग करते हैं, तो इससे एक महावाक्य को लेकर बैठ जाएं कि मेरा बाप कैसा है, तो मन बुद्धि जैसे उस पर फोकस होने लगेगा और मन उस स्थिति में स्थित होकर बहुत गहरी डीप साइलेंस में अनुभूति में चला जाएगा, बहुत सुख अनुभूति हुई। और उससे हमको जो हमारी कमी कमजोरियां वो कोसों दूर हमारे से चली जाएंगी। अगर हम इस महावाक्य को पूरी तरह से गौर नहीं करते हैं, तो जैसे हम अपनी कमी कमजोरियों का वर्णन करते रहते हैं, जैसे बाबा ने कहा ना, बिस्तर के हवाले हो जाते हैं, उदासी उलझन ये आ जाती मन में, क्योंकि हमने बाबा के महावाक्यों पर गौर नहीं किया, उस पर चिंतन नहीं किया, तो हम थोड़ा अपने प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना रखें कि हमें जो बाबा कहते हैं उस पर थोड़ा हम अटेंशन देकर उस पर थोड़ा पुरुषार्थ करें। लेकिन बाबा कहते ना, ये अटेंशन भी टेंशन में ना बदल जाए। कोई कोई बच्चे हैं वो अटेंशन को भी टेंशन में बदल देते हैं। वास्तव में जो अटेंशन टेंशन में तब बदलता है जब हम कोई गोल बिना सोचे समझे कि बहुत बड़ा गोल ले लेते हैं। हमें अपने कर्म क्षेत्र पर रहते हुए सारी चीजों को देखते हुए, अपने परिवार को भी देखते हुए, लौकिक अलौकिक सेवा कर्म क्षेत्र ड्यूटी ये सब चीजें देखते हुए हमें एक प्लान तैयार करना चाहिए, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम उतर सकें, उस पर पूरा खरा उतर सकें। ऐसा नहीं हमने बना लिया कि आज हम 10 घंटा योग में रहेंगे और शाम तक हमको हमारे से 1 घंटा भी योग नहीं हुआ, ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो क्या होगा? वो जो अटेंशन रख के हमने प्लान बनाया था वो सारा टेंशन में बदल गया, क्योंकि हम उस पर पहुंच नहीं पाए, वो हम अचीव नहीं कर पाए, तो क्या होगा? टेंशन हो जाएगी, टेंशन का टेंशन। तो वो एक टेंशन जब हमारे अंदर क्रिएट होता है और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, उससे मन भी हमारा हलचल में रहेगा, उसकी उसके वाइब्रेशन भी हमारी बॉडी पर असर करेंगे, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसा होगा, हमारे समान संपर्क में आने वालों को भी पता चलेगा कि स्पिरिचुअल वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी टेंशन दिखाई दे रहा है इनके जीवन में। तो हम अटेंशन को भी टेंशन ना बना दे, कहीं हम थोड़ा सा गोल रखें, उस पर खरा उतरें। पहले भी जिक्र किया था ना कि जो भी सामान्य दिनचर्या बनी है पहले उस पर हम पक्का खरा उतरें। बाबा की जो सामान्य दिनचर्या, अमृत वेले से रात्रि तक श्रीमत का हाथ, बाबा ने कहा बीच में मुरली में जिक्र कि श्रीमत का हाथ तुम बच्चों के सिर पर है, तो श्रीमत की भी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए कि हमें कौन कौन से कर्म के लिए कौन कौन सी श्रीमत दी है, जैसे कि अमृत वेले के लिए कौन सी श्रीमत मिली हुई है, रात्रि सोने के लिए कौन सी श्रीमत मिली हुई है, उन सोने से संबंधित बाबा ने मुरली में क्या क्या महावाक्य उच्चारित किए हैं, तो हम खुद उनको खुद कलेक्टिव करें, उनका खुद कलेक्शन करें। खुद अपने आप जब हम बनाते हैं तो वो एक हमारी अपनी अपने द्वारा तैयार की गई एक खुराक हो जाती है, और अपने हाथ से बनाई हुई रोटी कैसी वो अच्छी लगती है। तो हमें खुद के स्तर पर ही श्रीमत की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि अमृत वेले के लिए बाबा ने क्या कहा है, अमृत वेला करने के बाद क्या करना है, मुरली क्लास में कैसे सुननी है, बाबा ने बताया ना, कोई बच्चे तो दिल से सुनते हैं, कोई बच्चे ऐसे सुनते हैं, है ना। तो श्रीमत जो हमको मिली है भोजन के लिए, क्या श्रीमत मिली हुई है, समान संपर्क हम आते हैं तो कैसी हमको दृष्टि रखनी है, बोल हमारे कितने मीठे होने चाहिए, किसी को सुख देने वाले होने चाहिए, कल्याणकारी होने चाहिए, उमंगसा वाले होने चाहिए, किसी को प्रोत्साहित करने वाले होने चाहिए, सहयोग स्नेह देने वाले होने चाहिए। तो हर बात की श्रीमत मिली हुई है, मनसा वाचा कर्मणा समन संपर्क, लौकिक अलौकिक कर्म क्षेत्र, है ना, समय के प्रति, हर प्रकार की हमको बाबा ने श्रीमत दी हुई है। तो श्रीमत को अगर हम जब अपने जीवन में लाते हैं, और वो लाने का प्रयास वास्तव में करना, इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन उसके पहले उसकी समृद्धि हमको होनी चाहिए, अर्थात उसकी लिस्ट हम खुद तैयार करें, मुरलियों से ढूंढें, क्योंकि मुरली में बहुत सारा खजाना भरा पड़ा है। उस खजाने को कहीं ना कहीं हम नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए वो खजाना हमारे में समाता नहीं है, हमारा हो नहीं पाता है। बाबा ने तो खुले भंडार हैं, कोई चाबी ताला नहीं है, जिस भी समय बाबा के भंडारे में जाओ अपने आप को भरपूर हम कर सकते हैं। तो भगवान के महावाक्य जो हमारे लिए एक वरदान का काम करते हैं, लेकिन जब हम उन पर थोड़ा टाइम देते हैं, उन पर हम चिंतन करते हैं, उनको हम अपना बनाते हैं, तो बाबा की दृष्टि भी हमारे ऊपर बनी रहती है, और हम महसूस करते हैं कि सचमुच बाबा हमारे साथ में है। तो बाबा ने कहा ना, फॉलो फादर करने वाले बनो। कौन सा फॉलो फादर बताए, जो पांच बातें बाबा ने बताई ना मुरली में, जो बाप का नाम कौन सा विश्व कल्याणकारी, बाप का रूप, बाप के गुण, बाप का कर्तव्य, वो बच्चों का कर्तव्य है, तो सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो बाबा के तो सबका एक ही है ना, तो बाबा समान बनना है। केवल सन्मुख रहने वाले ही, कि केवल हम ठीक है बाबा से मिलन ना लिया सन्मुख आगे, लेकिन नहीं, जहां भी हम रहते हैं बाबा के समान हमारे कर्तव्य हों। तो ऐसे फालो फादर करने वाले बनना है। तो बाबा ने कौन सा वरदान दिया, सर्वशक्तियों से संपन्न भव का, है ना। लौकिक में जिक्र किया ना बाबा ने, लौकिक में क्या करते हैं, पुत्रवान भव, बड़ी आयु, सुखी भव, सदा आयुष्मान भव, अनेक प्रकार के वरदान मांगते हैं, और यहाँ बाबा ने हमको बड़ी आयु भव कभी बताया उसका, कि बड़ी आयु भव अर्थात क्या, कि जब से हमको ब्राह्मण जीवन मिला, जब से बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है, तब से लेकर अंत तक हमारा जीवन निर्विघ्न चलता रहे, एक रस चलता रहे। अर्थात निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि विघ्न नहीं आएगा, विघ्न तो आएंगे, लेकिन उन विघ्नों से हम प्रभावित ना हो जाएं। हाँ, उन विघ्नों का समाधान तो करना है, उसमें हमारा टाइम भी जाएगा, शक्ति भी जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल उनसे अछूते रहें। विघ्न तो हमको टच करने आएंगे, लेकिन हम उस समय उन विघ्नों के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए उन विघ्नों का समाधान करने के बारे में सोचेंगे, तो वो हमें दो विघ्न प्रभावित नहीं करेगा, तो वो हमारा जो उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि जो हमको वरदान याद रहेगा, जैसे बड़ी आयु भवन का, तो बड़ी आयु भव अर्थात लंबे समय से जो हमारा निरंतर पुरुषार्थ चल रहा है, जो हम उस पर थोड़ा ध्यान देकर अटेंशन देकर पुरुषार्थ करते हैं, यथार्थ एक्यूरेट, बाबा ने कहा ना यथार्थ पुरुषार्थ वो भी नहीं है, अगर समय पर याद ना आए तो वो भी यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। तो हम लंबे समय से इस ब्राह्मण जीवन में पुराने संस्कारों से मुक्त रहें, पुराने संसार के रीति रिवाजों से मुक्त रहें, है ना, जो भी हमारे संस्कार जो हैं ओरिजिनल अनादि आदि संस्कार वो हमें चिंतन में रहें, वो हमारी मनोस्थिति को शक्तिशाली बनाते हैं। और वास्तव में हमारे संस्कार तो वही है ना, अनादि आदि संस्कार, अनादि संस्कार ज्ञान गुण शक्ति पवित्रता आनंद प्रेम, ये सब हमारे अनादि संस्कार हैं, आदि संस्कार हैं। तो आदि संस्कार तीर्थ संस्कार सबको देने के संस्कार, तो जब हम संस्कारों पुराने संस्कारों से मुक्त होने का संकल्प करते हैं अर्थात उस पर चलते हैं तो हमारी आयु निरंतर बढ़ती जाती है, बड़ी आयु लंबी लंबी आयु दीर्घ आयु जिसको कहा जाता है। और उसमें निरोगी भव, निरोगी का भाव ने अर्थ बताया ना, निरोगी अर्थात क्या, किसी प्रकार का कोई माया भी रोग नहीं, अर्थात कोई संकल्प अपवित्र संकल्प नेगेटिव संकल्प उदासी के संकल्प अलबेलेपन के संकल्प व्यर्थ के संकल्प पर चिंतन के संकल्प पर निंदा के संकल्प पुराने संस्कारों के संकल्प, इन सब संकल्पों से मुक्त, ये सभी पुरानी बीमारियां हैं जो हमारे फ्यूचर को प्रभावित करती हैं, वर्तमान को भी प्रभावित करती हैं। तो इन सब चीजों से मुक्त जो रहने वाला है, हालांकि वो समृद्धियां आएंगी लेकिन उन समृद्धियों में हमारा ज्यादा समय वेस्ट नहीं होगा। अगर कोई हमको पुरानी बात याद कराता है तो बात तो उन्होंने याद कराई लेकिन उस बात को हम पकड़कर बैठकर विस्तार ना करें उसका, बल्कि वहां बीती सो बीती। इसलिए दीदी ने कहा ना लास्ट दीदी वाला जो हमने 28 जुलाई का जो सुना ना, सभी ने सुना ना दीदी की शिक्षाएं के लास्ट में दीदी ने क्या कहा, छोड़ो सब बातों को, क्या लेना भी छोड़ो, अब घर चलना है छोड़ो। तो ऐसे भी हम अपने पुराने संस्कारों को व्यर्थ बातों को छोड़ेंगे, जो बीत गया बीत गया। आज भी मान लीजिए आज भी अगर हमारे से 2 घंटे पहले 4 घंटे पहले या सवेरे कुछ हुआ किसी के साथ ना, तो छोड़ देना है, भूल जाने का उसको, क्योंकि उसको याद करने से फायदा कोई नहीं है। इसलिए जो हो गया बीती सो बीती, बिंदी सो बिंदी लगा के और आगे बढ़े ना, उसी में शक्ति आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। अगर हम उसी बीती बातों को पकड़ कर बैठेंगे तो वही चिंतन चलेगा, उसी के अनुसार फिर वो बातें पुरानी बातें और पुरानी को बातों को खींचेंगी। जितना अगर एक भी बात को हमने पुरानी बात को पकड़ लिया और उस पर चिंतन करना शुरू कर दिया तो उसके पीछे बहुत लंबी कड़ी लग जाती है, बहुत लंबी लाइन क्यू लग जाएगी। इसलिए हमको फुल स्टॉप, बाबा ने कितना सुंदर मेथड दिया हुआ है हर बात के लिए, फुल स्टॉप, हर बात की बाबा ने समझ दी है, नॉलेज दी है, हमको रोशनी दी है। तो समय पर चीज आना कि उसको व्यर्थ को स्टॉप कर देना, फुल स्टॉप कर देना, अर्थात हम ब्राह्मण जीवन से जी रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं, मतलब मर नहीं गए। अगर विस्मृत हो जाते हैं, उन्होंने कहा ना कोई बच्चे कोमा में चले जाते हैं, होते हुए जैसे नाक के बराबर हैं, जिंदा होते भी जैसे मुर्दे के समान है, तो बड़ी आयु के सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन का जो है श्रेष्ठ जीवन है, जो सदैवी जीवन है, सर्व प्राप्ति से संपन्न जीवन है, ये हमको समर्पित रहेंगे तो हमारा जीवन निरोगी भव का हो जाएगा। तो निरोगी भव का बाबा से वरदान मिल जाएगा, तो कितने वरदान मिले, सर्वशक्तियों से संपन्न भव, सदा ज्ञान धन ज्ञान गुण शक्ति से संपन्न भव, सुखी भव, बड़ी आयु भव, फिर पुत्रवान भव, विभाव ने उसका बताया पुत्रवान भव का अर्थ क्या है। तो हम बार बार उलझनों में न रहे, दिल शिकस्त की स्थिति हमारी न रहे, ऐसा ना हो कि हम दिल शिकस्त के बिस्तर के हवाले रहे, है ना, बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना, अगर कोई बीमार होता है तो बार बार बिस्तर के हवाले होता है, तो ऐसी प्रकार की उलझन न आए हमारे जीवन में। तो हम थोड़ा सा भी अटेंशन रखते हैं तो निश्चित तौर पर बाबा हमको बहुत मदद करते हैं, जैसे बाबा के प्रदान अपने आप काम करते रहते हैं, तो हमेशा हम निरोगी भाव के वरदान का पूरा फायदा लें, सदा तंदुरुस्त रहें। फिर बाबा ने पुत्रवान भाव के वरदान का भी बहुत सुंदर बाबा ने हमको उसका रहस्य बताया, इसमें एक साथ में बताया ना बाबा ने, माप समान मास्टर रचयिता, ऐसी स्टेज पर स्थित रहो तो इससे क्या होगा, सबके प्रति हमारी शुभ भावना कामना बनी रहेगी। जैसे लौकिक में भी देखते हैं, जो लौकिक परिवार होता है तो उसके ऊपर विशेष हमारी अटेंशन रहती है, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रहती है, किसी के प्रति कोई हम नेगेटिव नहीं सोचते हैं, अगर किसी को किसी की जरूरत हो तो हम उसके प्रति पूरा मनोयोग से उसको हेल्प करते हैं, उसी तरह से जब हम मास्टर चेतक की स्टेज पर रहेंगे तो कोई भी आत्मा जब हमारे समान संपर्क में आएगी तो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो श्रेष्ठ होंगी उनके प्रति, उनको कुछ देने की होंगी, कुछ कल्याण करने की होंगी, कुछ महसूस, कुछ श्रेष्ठ जैसे स्थिति हम उनकी बनाने की चेष्टा करेंगे, बाबा की उनको कुछ अनुभूति कराएंगे। तो ऐसी स्टेज पर जो हम रहेंगे, और यहाँ बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना वृक्ष का, है ना, वृक्ष का क्या होता है, वृक्ष जब अंतिम से जाती है तो बीज बाबा के ऊपर आ जाता है, अर्थात जिस सृष्टि रूपी वृक्ष की अंतिम जो स्टेज है तो बीज कौन है, शिव बाबा, तो अब हम सबके सामने आ गए ना। तो ऐसे हम सभी इस तलब वृक्ष के ऊपर महसूस करें अपने आप को, और ये कि योग का बहुत सुंदर प्रयोग है कि मैं आत्मा मास्टर चेता विश्व कल्याण करने के लिए कल्प वृक्ष के अंतिम स्टेज ऊपर चोटी पर खड़ी हूँ और वहां से पूरे वृक्ष को जैसे साकार कर रही हूँ, और हर आत्मा को ये ज्ञान गुण शक्तियों की प्योरिटी की सारी साकार जा रही है, और बाबा का प्रधानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है, है ना, जैसे महसूस करना है जैसे बाप दादा के प्रधानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है, मस्तक के ऊपर है, चिपके हुए हैं और फुल करंट आ रहा है और मुझसे प्योरिटी के वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन, ज्ञान के वाइब्रेशन ऐसे निरंतर चारों फ्लो हो रहे हैं, फुल फोर्स से फ्लो हो रहे हैं, है तो महसूस करना है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो बाबा के महावाक्य हैं उनको हम योग में तब्दील कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे मास्टर बीज रूप बन, मास्टर चेता बन, सारे वृक्ष को बाबा कहते पानी दो, कौन सा पानी, किरणें दो, पानी दो, सुख शांति की किरणें दो, है ना, स्नेह का पानी दो। तो ये हर वरदान तो बाबा ने हर बच्चे को दिया, जन्मते दिए सारे वरदान, है ना, फिर बाबा के तो उस वरदान को विधि मिलानी है, विधि कार्य मिलाने की विधि बताई ना बाबा ने, कौन सी, उसमें बताया है बाबा ने कि स्मृति में रखना, सबसे पहले स्मृति में आएंगे तो वो फिर समर्थ बन जाएंगे उस कार्य करने को करने के लिए कि भगवान मेरे साथ में है, उसका साथ निरंतर मेरे साथ में है, उसकी छत्र छाया के नीचे मैं चल रहा हूँ और उसने मुझ आत्मा के अंदर सारा ज्ञान भर दिया है, है ना, और समय पर वो काम में आएगा। मान लीजिए कोई समस्या हमारे सामने आती है तो समस्या के समय हम क्या सोचें कि मैं तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, स्वयं सर्वशक्तिवान बाप मेरा साथी है, पिछले अनेक कल्पों में भी बाबा के साथ से मैंने इन समस्याओं पर विजय पाई है, ये तो केवल रिपीट करना है, पिछले संडे की मूल्य में था ना, ये तो माया एक खेल है, खेल को क्या करना है, रिपीट किया जाता है, और खेल में क्या होता है, रिफ्रेशमेंट होती है, पिछले संडे की मूल्य थी ना, तो रिफ्रेशमेंट है। तो ऐसे समस्याएं भी एक खेल की तरह है, उनमें भी हम ऐसे महसूस करें कि जैसे वो तो अनेक बार रिपीट कर चुके हुए हैं, विजय तो हमारी निश्चित है, हो ही पड़ी है और है ही है निश्चित, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान बाप साथ है। इसलिए कोई भी बात आती है, समस्या आती है, तो उसमें हम स्मृति मिलाएं कि मैं कौन हूँ, वो स्मृति हमको समर्थ बना देगी, है ना। जैसे हनुमान को भी आज ईश्वर बैन जी ने बताया ना इस क्लास में कि हनुमान को स्मृति दिलाई तो कैसी स्मृति आ गई उसके अंदर, पूरा पहाड़ी बाद में उठा के ले आया। तो ऐसे हम सब आत्माओं के अंदर भगवान के सारे वो महावाक्य जब गूंजते रहेंगे तो महावाक्य वरदान के रूप में कार्य करना आरंभ कर देंगे, है ना। तो समय प्रमाण, जैसा समय उसी प्रमाण हमको महावाक्यों की स्मृति आएगी। ऐसा नहीं कि हम उसमें सोचते रहे या किसी सोचते, किसी को फोन करे पूछे भी क्या करें क्या करें। तो वास्तव में हम जब एक दो से पूछते हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए तो कहीं ना कहीं हमारे में वो कुछ ना कुछ कमी ये होती है कि हम उन महावाक्यों पर हमने ध्यान नहीं दिया हुआ है, जो हमको समय पर याद आने की बजाय जो हम दूसरों का सहारा ले रहे हैं। हाँ, कुछ एक बातों को दूसरों को से भी सहारा लेना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिकतर ऐसा ना कि हम बार बार हम दूसरों को फोन लगाते रहें, दूसरों को ढूंढते रहें। भगवान ने हम सबको तो वरदान दिए ना, इक्वल बांटा हुआ सब ने, भेदभाव तो किया नहीं है, है ना, उसके तो सारे प्रिय बच्चे हैं, सबको बराबर प्यार कर रहा है। लेकिन एक साकार मूल्य के महावाक्य हैं जो हम कल पढ़ रहे थे, जो इस महीने के चार्ट में भी है कि जो बच्चे सर्विसेबल हैं, यादव सेवा में रहते हैं, उन बच्चों को बाबा चुन चुन कर सर्च लाइट देते हैं। कितना बड़ा सुंदर महावाक्य है ये, 2019 की मुरली साकार मुरली में है। जो बच्चे यादव सेवा में रहते हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप दादा उनको चुन चुन कर सर्च लाइट देते हैं, कितना सुंदर वाक्य है। तो समय पर हमको समय प्रमाण वो प्रधान याद आएंगे। तो बाबा कहते हैं जो संगम के प्रधान है तो 21 जन्म में चलेंगे, है ना, 21 जन्म तक ये काम करते रहेंगे और उसके बाद भी वो काम करते रहेंगे। तो ये समय कौन सा चल रहा है, प्रधान प्राप्त करने का समय चल रहा है प्रदाता बाप से। तो बाबा कहते हैं अपने आप को अटेंशन रखो, अपने को देखते रहो, चेक करते रहो कि सचमुच वो वरदान को कार्य में लगाते हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अटेंशन देने की जरूरत है। दूसरा भाव ने क्या कहा कि वरदान जो है जब स्मृति में रहते तो कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, है ना। भक्तों की जैसे एग्जाम्पल दे, अगर थक जाते तो क्या सोचती है, है ना, वरदान मांगते हैं भगवान से। और आप लोग भी क्या करते हैं, आप लोग भी क्या बोलते हो कि सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। लेकिन बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर क्या है, बाबा का तो सदा हाथ है, वरदाता बाप का हाथ तो सदा ऊपरी है, है ना। और हाथ कौन सा बताया, श्री श्री मत, श्रेष्ठ मत, श्री मत, श्रेष्ठ मत का हाथ आपके ऊपर है। तो बताया ना पीछे, पहले जो बताया अमृत से रात तक जो मन वचन कर्म संकल्प समय सेकंड हर समय में सोचे कौन कौन सी श्रीमत मिली हुई है, है ना। फिर बाबा ने एक और भी सुंदर बताया कि अपनी कौन सी स्थिति रखो, इच्छा मात्र स्थिति, और किसी की स्थिति का जिक्र किया, देवताओं की स्थिति का, है ना। और ये फरिश्ता जीवन की भी क्या है, विशेषता है। तो देवता जीवन कैसी होती है, देवता जीवन था सदा सबको देने के लिए, देवता किसी प्रकार की कामना नहीं रखते हैं, इच्छा मात्र अविद्या। तो यहाँ भी बाबा कहते हमें क्या करना है, जो हद की इच्छाएं हैं, मुश्किल से, बोझ से, इन सब बातों से हमको अविद्या, मुश्किल क्या होती है इसकी भी हमको अविद्या हो जाए, बोझ क्या होता है इसकी अविद्या हो जाए। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने बताया ना, बोझ तो बाप ले लेते हैं लेकिन बच्चे अपने ऊपर ले लेते हैं। बाप जिम्मेवारी बाप की है लेकिन बच्चे अपनी समझ लेते हैं, है ना। बोझ शब्द को बाबा कहते हो तो आप बच्चों के कारण कहना पड़ता है, पिछले संडे की मुरली में ना बाबा बोझ शब्द नहीं बोलते लेकिन आप बच्चे बोझ शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए बाप दादा को बोलना पड़ता है। तो बोझ की भी विद्या, मुश्किल की भी अविद्या, ये एक है बंधन, एक है संबंध, लेकिन कर्म का संबंध भी और बंधन भी, इन दोनों से क्या करना है। कर्म के संबंध में तो हमको आना है लेकिन बंधन नहीं बन जाए कहीं वो संबंध, नहीं तो वो कर्मातीत अवस्था नहीं होगी, है ना। तो ये थी आज की मुरली। और क्या कहा बाबा ने, फिर बाबा ने भी और प्रसाद की बात की ना आगे, कौन सी, हाँ, कई पुरुषार्थी बच्चे हैं, पुरुषार्थ का भी बोझ अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं अटेंशन का टेंशन हो जाता है, बताया ना पहले, अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना है, अटेंशन रखना है लेकिन हमको छोटे छोटे गोल तैयार करने हैं, है ना। वो छोटे छोटे गोल जब हम उन पर पूरा खरा उतरेंगे, उनको अचीव कर लेंगे, तो फिर हम निरंतर पुरुषार्थी बन जाएंगे, निरंतर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, निरंतर इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे, निरंतर वरदानों का अनुभव करते रहेंगे। तो अटेंशन को टेंशन में ना बदलेंगे, है ना। यथार्थ पुरुषार्थी का भाव कितना, हर कदम हर कर्म नेचुरल होगा, है क्योंकि उनको नॉलेज मिली है, नॉलेज की राइट माइट मिली है, है ना। तो बहुत काम पकड़ लिया हमने और हो एक भी नहीं रहा तो क्या होगा, बाद में गिल्ट कॉन्शियस होगी। तो उससे पहले हम देख लें अपनी क्षमता के अनुसार ही हम उतना काम करें, है ना। हाँ कहीं कहीं ज्यादा भी होता है लेकिन अगर हमारी दिनचर्या हमेशा के लिए ऐसी ना बन जाए कि हाँ और सबको हम हाँ कहते रहे, किसी ने हमको सेवा दी, हाँ हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, और हो हमसे हो ही ना, 10 लोगों से काम ले लिया और हमसे 2-3 ही, तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए कहीं कहीं हमको मना करना भी सीखना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं हमेशा हाँ हाँ जी का पाठ पक्का करना है, वो तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब जगह हाँ जी बोलते रहें انہوں نے ہمارے پر وشواس رکھا اور بعد میں ہم نے ان کا کام بھی نہیں کر کے لیا جو ہم کو سیوا دی تھی. جو انہوں نے ہمارے پر وشواس رکھا تو ہم اس نشٹھا پر بھی نہیں اتر پائے. تو وہ بھی ہم کو اٹینشن رکھنا ہے کہ کہیں کہیں وہ اٹینشن کا ٹینشن نہ ہو جائے کریٹ. تو نہیں تو کیا پرشاد سے بھاری کر دیتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, بیلنس نہیں جاتا ہے. اور بابا کہتے ہیں نا پچھلے سنڈے مولے میں تھا, اس میں بھی تھا, بیلنس سے کیا ہوتا ہے, بابا سے ایکسٹرا بلیسنگ ملتی ہے. تو بابا کہتے ہیں سدا انوبھو کرتے رہو, بردانوں کا انوبھو کرتے رہو, چلتے پھرتے بدھی میں یہ چت رکھے سے سدا گھومتے رہنے چاہیے سمرتی پر, کہ ماتھے پر بابا کا بردانی ہاتھ ہے, بردانوں سے پلتے چلو اڑتے چلو, ہے نا. تو یہ برداتا کا نرنتر انوبھو کرتے رہو. پھر بابا نے کس سے ملاقات کی, پانڈو سے, ہاں مہارتھی بھائیوں سے. تو کیا کہا بابا نے مہارتھی بھائیوں سے, کہ بردانوں سے پڑھ رہے ہو, جنم ہی بردانوں سے ہوا ہے, ہے نا, پانڈو کی مہیما کی. تو بابا نے کر مہیما کرتے رہے تو کتنے بھاگوت جو بنا ہوا ہے کس کا ہے, آپ کا ہی ہے. تو باپ کی نظر میں ہر ایک کی کیا ہے, ہر ایک کی گن وشیشتائیں بابا دیکھتے ہیں, اور کچھ دیکھتے نہیں. کن طرح سندر مہاوا کے بھگوان کا جانتے بھی نہیں جانتے ہیں. مانا ان پر بابا کا اٹینشن نہیں رہتا کیونکہ وہ ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کو دیکھنے کی. بابا تو اپنے گن وشیشتاؤں سے ہم کو سمپن کرنے آیا ہوا نا, نہ کہ ہماری کمزوریوں کو گنتی کر کے سب کو بتانے کے لیے. تو ہم بھی اس کے بچے ہیں, تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے, سب کی گن وشیشتائیں دیکھنی ہے. تھا نا پچھلے سنڈے کی مرلی میں تھا اور اس کے پچھلے سنڈے بھی, کہ سب کی وشیشتائیں دیکھنی ہے, وشیشتاؤں کا جھنڈا لہراتے رہو, ہے نا. جیسے وہ جھنڈے کی بات کی تھی نا شیوراتری کے سمے, کیا بتایا تھا بابا نے, کہ شیوراتری کو جھنڈا لہراتے ہیں تو اوپر سے پھولوں کی برسا ہوتی ہے. تو یہاں بابا وشیشتاؤں کی برسا کرتے ہیں, ہے نا. ہمارا بابا اویناشی بابا چالا ڈول بابا یہ پردان بھی دیتے اس مرلی میں بابا نے. تو ہمیں بھی سب کی وشیشتائیں دیکھنی ہے, اپنی وشیشتائیں یاد رکھنی, دوسرے کی وشیشتائیں رکھنی ہے یاد. تو وشیشتاؤں کا ہی ورنن کرنے والے ہیں. تو بابا کہتے ہیں ایسے پانڈو جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں کس کو, پھر اس کی شکتیاں شکار کرتی ہیں, ہے نا. تو یاد اور پھر سیوا کا بھاو نے کیا بل ملتا ہے, وشیش بل ملتا ہے, اور وشیش بل ان کو ملتا ہے جو آوشیکتا قسم میں کام آتے ہیں, ہے نا. ہماری دادیاں یا ہم بھی ایسے دیکھتے ہیں ماؤنٹ آبو میں بھی کوئی کوئی جو بھلے ہمارے ادھر گیان سننے نہیں آتے ہیں, جو ماؤنٹ آبو کے لوکل جو لوگ ہیں, تو کچھ ایک ہیں جنہوں نے سنے پر یہ کو بہت مدد کی ہے. آج بھی ان کو ہر سال آم کی جو پیٹی جاتی ہے تو وہ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کو ابھی بھی یاد کرتے ہیں. تو جنہوں نے بھگوان کے اس بے حد کے کارے میں سمے پر جو سہیوگ دیا ہے, اس سمے پر سہیوگ دینے سے بہت بل ملتا ہے, دعائیں ملتی ہے, آشیرواد ملتی ہے, خوشی ملتی ہے, شکتی ملتی ہے. تو بھگوان کی کرپا درشٹی بنی جاتی ہے. تو سمے کی بہت بڑا مہتو ہے, آوشیکتا کا سمے, جس چیز کی جس سمے ضرورت ہے اسی سمے اس کو دیں تو مہتو ہوتا ہے. نہیں تو بعد میں اگر چیز آ گئی اور پھر ہم پوچھیں کسی کو تو اس کو اتنا مہتو نہیں رہ پاتا, ہے نا. تو اس میں اور بھی بابا نے بات بتائی کہ پانڈو استھاپنا کے آدھی میں جو استھاپنا, تو پانڈو تو تھے آپ بھی لیکن مر جاتے اس سمے, ہے نا, اور شکتی ایگزامپل بنی. تو یہ پانڈو اور شکتیوں کی بات تھی. اور پھر بابا نے کیا تھا کہ سیوا کرنے سے جو آتمائیں کی سرو آتمائیں خوش ہوتی ہے, اس کا بل ملتا ہے, ہے نا. پھر وہ بھاشن کی بات بتائی نا بابا نے, چرتر کا بات سنو. دادیاں جب کہیں بھی جاتی ہیں تو کیا پوچھتے ہیں کہ بابا کیسے تھے, ان کے چرتر سناؤ, کوئی تو باپ کی باتیں سناؤ, ہے نا. اس لیے سیوا کی وشیشتا کا بابا بچوں کو پردھان ملا ہوا ہے. چاہے بابا کتنے بولے کہیں اسٹیج پر بھاشن نہیں کرتے, لیکن سب سے بڑا بھاشن ہے چرتر سنا کر کسی کو چرتروان بننے کی پریرنا دینا, یہ سب سے بڑی سیوا ہے. تو یہ بابا نے انیک مرلی میں بہت ساری باتیں بتائی. اس کو اگر ہم چنتن کریں کتنے سارے ایسے ٹاپک ہیں اس مرلی کے بیچ میں, ہے نا. جیسے کوئی بھی ٹاپک نکال سکتے ہیں, جیسے کہ برتانوں کی برسا کیسے محسوس کریں اس کو, یہ نکالیے. پھر الجھن اور دل شکست کا بستر, وہ ٹاپک ہو سکتا ہے ایک. ایسے بہت سارے ہم ٹاپک نکال سکتے ہیں بیچ میں سے, تو اس پر چنتن کریں, کچھ نہ کچھ ہماری بدھی میں چلنا. یاد اور سیوا کا بد کیسے ملتا ہے, یہ ایسے بچوں کو بابا نے ملاقات کی. اور بردان کیا تھا آج کا, حد کی ذمہ داریاں, حد کی ذمہ داریوں کو بے حد میں پریوتن کر دو تو کیا ہو گئے, سمرتی سرو نشٹ موہ. تو نشٹ موہ بننے کے لیے صرف اپنے سمرتی سرو کو پریوتن کرو, ہے نا. वो कब आता है? जब हम सोचते हैं कि हम गृहस्थी हैं, मेरा घर है, हमारा संबंध है, जब हद की जिम्मेवारी को बेहद में परिवर्तन कर देते हो। लेकिन बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो बाबा की तो दूसरी हद की सपने पूरी हो जाएगी, है ना। तो बेहद की जिम्मेवारी को भूल जाते हो, इसलिए क्या होता है, बिगड़ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, वो फर्ज मोह का मर्ज बन जाता है, बीमारी लग जाती है। इसलिए अपने समृद्धि स्वरूप को बदलो, परिवर्तन करो और नष्ट मोह बनो। और आज का स्लोगन बहुत सुंदर स्लोगन था, कौन सा, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। जो भी बातें आती हैं, पहले जैसे दीदी ने कहा छोड़ो बातों, अब छोड़ो इन बातों को, घर चलना है, वापस जाना है, तो घर की स्मृति रहे। तो ऐसे अनेक प्रकार की बाबा की बातें थी, बाबा ने कैसे हमें अपने सम्मान बनाने के लिए कितने सारे वरदान दिए, है ना, कौन कौन से वरदान दिए, सर्वशक्ति से संपन्न भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, बड़ी आयु भव, धनवान भव, मास्टर चेता भव, जो पुत्रवान भव का बाबा ने बात बताई, है ना। तो कितने वरदानों से भरपूर कर दिया हम बच्चों को। तो ये निरंतर हमारी स्मृति जो मन में बनी रहे तो हम निरंतर समर्थ स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले। भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले।